jaya radhe jaya krishna jaya guna jaya radhe jaya krishna jaya rama jaya radhe jaya krishna abhinava bana Govinda Gopinatha Madana Moha
Jisi Ghata Vanshi Vata Vada Vata
Jisi Ghata Vanshi Vata Vada Vata
Jisi Ghata
Kesi gacha bhante bhata vadasa kanana Jahasa bhali la kailo Srinandanandana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana
Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya
Vrindavana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya
Vrindavana
Govinda Gopinatha Madana Moha Govinda Gopinatha Madana Moha Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Hare Rama, Hare Rama.
Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram
Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram
O Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Gaura Premananda Hari 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 Go Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namaha Om Vishnu Padaya. Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desha Tarine Gurave Gaura Chandraya Radhika Tadalyaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो कृष्ण भावना अमृत संग इज नेचुरल। इस्कॉन सोसाइटी श्री प्रभुपाद कहते हैं ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। नेचुरल है का मतलब है, स्वाभाविक का मतलब ये है इज ऑलवेज ब्लिसफुल, आनंदमय है। कृष्ण भावना अमृत संग स्वाभाविक है और आनंदमय है। आज समुन्दर के किनारे सुंदर वातावरण में जैसे सामान्य लोग भी बीच पे घूमने आते हैं, ऑर्डिनरी पीपल दे आल्सो कम टू एंजॉय एट द बीच। सो कृष्ण कॉन्शियस ये भक्त भी आज बीच के ऊपर एंजॉय करने आए हैं, पिकनिक पे आए हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? तब आज ये भगवत गीता का एक श्लोक हमने लिया है जिसका हम चर्चा करेंगे। तो आप पाठ कीजिए हमारे साथ छठे अध्याय का 17वां श्लोक है ध्यान योग का। बोलिए युक्त आहार विहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसो युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुखः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो योग है, योग का अर्थ है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, भगवान से साथ रिश्ता जोड़ना। ये कौन सा योग है? बोला ये वो योग है जिसमें दुखः दुख समाप्त हो जाता है, सब दुख चले जाते हैं। जब दुख चले जाते हैं तो क्या होता है? आनंद ही आनंद होता है, सुख ही सुख होता है। तो क्या करने से दुख चले जाते हैं, ये कौन सा योग है जिसमें दुख चले जाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार। युक्त का श्री प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है रेगुलेटेड, अंग्रेजी में लिखा है रेगुलेटेड। नेम से आहार का हो मतलब है भोजन। युक्त आहार इसका मतलब समय पे खाना और सही खाना। आयुर्वेदिक के आचार्य वाग्भट ने कहा है कि रित भुक हित भुक मित भुक, रित भुक हित भुक मित भुक। भुक का मतलब खाना, हित भुक मैंने वो खाना चाहिए जो हितकारी हो, हित का मतलब जो लाभदायक, वो खाना चाहिए बेनिफिशियल, जो हो लाभ वाला हो वो खाना चाहिए। एक होता है भगवान का पकाया हुआ भोजन, जो भगवान पकाते हैं वो होता है फल फ्रूट है भगवान के पकाए हुए, फल फूल ये भगवान का पकाया हुआ भोजन है। दूसरा चावल दाल रोटी सब्जी ये पकाते हैं, ये मानव का भोजन है, ये इंसान पकाता है, भगवान को भोग लगा के खाता है। और एक ऐसा भोजन होता है जो राक्षसी भोजन होता है, असुरों का, जो मरे हुए मुर्दों को खाया जाता है। तो युक्त आहार का मतलब वो भोजन करना चाहिए जो हितकारी हो बेनिफिशियल हो। और फिर मित्त भूख थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा। आयुर्वेद में लिखा है कि ये जो हमारा पेट जिसमें खाना जाता है ये एक थैली है, आधी थैली भोजन से भरनी चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर वो दाल आल का रस आएगा, चौथा हिस्सा हवा के लिए रखना चाहिए, तो अंदर मिक्सी में सब मिक्स हो जाए। आप फुल मिक्सी भर के कुछ काम कर सकते हैं? मिक्सी को थोड़ा कम भरना पड़ेगा तब अंदर माल मिलेगा, नहीं तो मिक्स नहीं होगा, वो गिर जाएगा बाहर। तो थोड़ा सा कम खाने से हाफ भोजन 1/4 लिक्विड और 1/4 एम्प्टी फॉर द एयर, अंदर हवा अंदर घूमेगी तो सारा अंदर, ये मिक्सी है छोटी यहाँ लगी हुई है अंदर, वो इसको पावर वावर की बाहर से जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर में सब ये मिक्सिंग होता है। तो ये मिक्सी में ये मित्त भूक हो गया। और फिर एक और बहुत बड़ा हित भूक, मित्त भूक और रित भूक। खाना क्या चाहिए? बोला जो पहले ईमानदारी से कमाया हुआ वो खाना चाहिए, लेकिन भगवान को भोग लगाया हुआ खाना चाहिए। हमने आपको 2-4 दिन पहले बताया था एप्पल रिवॉल्यूशन। एप्पल तो समझते हैं ना सब, एक एप्पल का रिवॉल्यूशन पहला क्या हुआ? सिन का, पाप। आदम ने कहा तुम एप्पल मत खाना, आदम को कहा, उसने खाया और पाप का दुनिया में रिवॉल्यूशन हुआ। फिर एक एप्पल पेड़ से खिला गिरा और न्यूटन के सर के ऊपर गिरा, उसमें साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया। उसके बाद एक एप्पल रिकॉर्ड आया जॉर्ज हैरिसन का एप्पल, उसमें पॉप म्यूजिक जो आया उसका रिवॉल्यूशन हुआ वर्ल्ड के अंदर। फिर एक एप्पल आया कंपनी जिसने एप्पल फोन और कंप्यूटर निकाले, ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया। लेकिन एक एप्पल प्रभुपाद पहले दिनों में रो लेके भगवान को भोग लगा के टुकड़े करके बांटते थे, उससे स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हुआ। तो एक बिना प्रसाद अर्पण करे आदम ने खाया तो पाप पैदा हुआ, और एक अर्पण किया हुआ एप्पल प्रभुपाद ने बांटा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो गया। तो क्या खाना चाहिए? युक्त आहार। भोजन पहले तो सात्विक होना चाहिए। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है पर्पट में, भगवान ने 9वें अध्याय में बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्य पृच्छति। भगवान ने कहा मुझे चाहिए क्या? बोला एक पत्ता हो तुलसी का, एक तुलसी जे चलू भर जल मात्रे न तुलसी जले न। भगवान विक्रीते, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। एक बार नारद जी घूमते हुए द्वारका गए तो सत्यभामा ने कहा है, श्री कृष्ण मुझसे प्रेम करें, ऐसा कोई आपके पास मंत्र है? केवल मुझसे प्रेम करें, नहीं तो बहुत रानियां हैं। बोला एक बात है, मैं आपको मंत्र बताता हूं लेकिन आपको कृष्ण मेरे को देना पड़ेगा, उसके बदले मंत्र बताऊंगा, भाई कुछ तो देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सम प्राइस। बोला ठीक है। वो कृष्ण दे दिया, मंत्र ले लिया। तो नारद ने बोला आप तो मेरे को कृष्ण दे दिया, मैं लेके जा रहा हूं। बोला आप कृष्ण को ले जाएंगे? अरे तो हमारा कहा घर कैसे चलेगा, कृष्ण मैं नहीं दे सकती। बोला नहीं, आपने दे दिया मुझे, मैं ले जा रहा हूं, चलो कृष्ण। और कृष्ण भी मुस्कुराते हुए नारद के साथ चल दिए। बोला नहीं नहीं, हमारा पति देव दीजिए, इसी से प्रेम के लिए तो आपको कहा था मंत्र। बोला वापस लेना है तो इसको तोल के इसके बराबर का सोना, वो नारद ने कहा मेरे को दे दो और कृष्ण वापस ले लो। तराजू लगा दिया, वेइंग, एक तरफ कृष्ण बैठ गया। अब तो उसने बोला मेरे घर में इतना सोना है, लेके सत्यभामा अपना सारा सोना लाके डाला, कृष्ण भारी है पलड़ा ऐसे पड़ा है सोने का। सब रानियों को कहा अपना पति जा रहा है, कुछ सोना घर में है तो लाओ, सबने घर में लाके सोना डाल दिया, भगवान भारी पड़े। रुक्मणी से तो उनको ईर्ष्या थी, रुक्मणी को कहा अब क्या करूं बहन, ये तो सड़ा हमसे गलती हो गई, हमने इस नारद की बातों में आके बेच दिया कृष्ण को, अब वापस लेना है तो तोल में सोना डालना है। रुक्मणी कहती है कुछ नहीं डालना है, एक तुलसी का पत्ता लाओ। और तुलसी का पत्ता जैसे रखा और भगवान ऐसे ऊपर हो गए, और तुलसी के पत्ते के बदले भगवान वापस मिल गए। तो एक पत्ता अर्पण करने से द्वारका के रानियों को भगवान ने नारद से वापस ले लिया। पुष्पम, वो गजेंद्र बड़ा हाथी, इंद्रद्युम्न बड़ा तपस्वी, दक्षिण भारत का अगस्त मुनि का शराप दे दिया उसको, उठा नहीं तो हाथी बन गया। और नहाते हुए, ये तो समुन्द्र है, ऐसा एक बहुत बड़ा सरोवर था जैसे गांव बासा गए थे ऐसा एक यहाँ का, तो ऐसा सरोवर के अंदर नहा रहा था तो अपने हथनियों के साथ, अंदर मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। अब पानी में रहने वाले मगरमच्छ का बल बढ़ता गया और हाथी वो तो धरती के ऊपर रहने वाला वो कमजोर होने लगा। तो अब क्या करे बेचारा? तो बेचारे को याद आ गई प्रार्थना, हे गोविंद, भगवान का नाम उच्चारण किया और एक लोटस फ्लावर, एक फूल उठा के भगवान को अर्पण किया और भगवान बैकुंठ से चले आए। तो एक फूल अर्पण करने से, जस्ट वन फ्लावर, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। अब ये गजेंद्र की कथा एक हाथी और मगरमच्छ की कथा नहीं समझनी चाहिए, क्रोकोडाइल और एलिफेंट की कथा नहीं है ये। टाइम एज ए क्रोकोडाइल, ये जो समय है ना, जो टाइम है, ये बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। और हम सबको, हम हाथी की तरह पागल हैं और हमको पकड़ के रखा है काल ने। ये हमारे सीनियर सिटीजन जो सब आए हैं, जो हमारे 60 से ऊपर के बड़े सीनियर सिटीजन है ना, ये 65 साल पूरे मगरमच्छ के मुंह में चले गए हैं, बाकी कोई 5-10 साल बचे हुए हैं बाहर। और ये हमारे नौजवान बच्चे आए हैं, ये 10-12-15-20-25 साल गए हुए हैं, और हम बीच वाले जो हैं 40-50 साल गए हुए हैं। सभी ऑल आर इन दी माउथ ऑफ टाइम क्रोकोडाइल। देयर इज नो वे, हाथ ऊपर करके बोलना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भगवान आके सहायता करेगा, नहीं तो हाथी की तरह हमारा बल काम नहीं देगा। 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों की ताकत थी दुशासन में, वो थक गया, लेकिन 10 गज की साड़ी द्रौपदी की खींच खींच के थक के हार गया। भगवान अगर सहाय हो, जे सहाय हो भगवान, तो फिर दूसरा 10,000 हाथियों का बल थक गया और एक स्त्री की साड़ी भी वो खींच खींच के थक के बेहोश हो गया। तो ये भगवान रक्षक होता है तो कौन उसका बिगाड़ सकता है। पत्रम पुष्पम फलम, फल किसने भगवान को अर्पण किया? एक तो मां शबरी ने राम जी को फल दिया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस सबरी के फल खाए, भूल गए ठकुराई। राम जी ये भूल गए कि मैं भगवान हूं और उसका फल झूठा खा रहे हैं। और दूसरी वो फल वाली मथुरा से फल लेके और गोकुल में आई और कहती है फल ले लो। भगवान कहते हैं फलदाता तो मैं हूं, कर्मों का फल मैं देता हूं, ये दूसरा फल कौन दे रहा है? ये बाहर फल कौन दे रहा है फल? एस्टोनिशिंग है। राम लीला में आपने एक प्रसंग सुना होगा, भगवान जब वनवास के लिए निकलते हैं तो तीसरे दिन श्रृंगेरपुर में रुके हैं, गंगा जी के तट पे। वहां का वन का राजा निषाद राज गुहा है, उसने भगवान का बहुत बड़ा आदर सत्कार राम जी का किया है। तो वो अपने परिवार का जब परिचय करा रहा है, वॉज गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ हिज फैमिली, तो उसने कहा ये मेरी माता है। तो गुहराज की माता को भगवान रामचंद्र ने जाके जी जैसे अपनी माँ कौशल्या को प्रणाम करते हैं ऐसे प्रणाम करा। तो माँ के हृदय में आया कि मैं मेरी गोद में बैठ के मुझे माँ कह देता ये राम, कितना मेरा को सुख मिलता। लेकिन आज तो ये 27 साल का नौजवान है, अब मैं कैसे इसके प्रति माँ का भाव दिखाऊं? भगवान उसके भाव को जान गए। वो निषाद राज की माँ मालन बनी, वो फल बेचने वाली बनी गोकुल में, और गोकुल में फल बेचने के लिए जब आई तो भगवान बाहर निकले हैं, कह मैया फल दे दो। बोला ऐसे मुफ्त के फल नहीं मिलते हैं, तो कुछ अंदर से धान लेकर आओ, अन्न लेकर आओ। भगवान ने कहा मैया हाँ मैं लेके आता हूं। भगवान जाने लगे, इसको लगा कि मैंने गलती कर दी, वापस नहीं आया तो छोटा बच्चा है 3 साल का, उसको डर लगा। तो भगवान ने समझा मैया डर रही है, तो पीछे मुड़ के कहता है जाना मत मैं अभी आ रहा हूं। फिर थोड़ा आगे जाके बोलता है जाना मत, स्टे, आई विल कम बैक। अंदर गए, कुछ दाने ले लिए और लाए, ए ले मैया दाना, अभी फल दे। बोला ऐसे नहीं, तू मेरी गोद में बैठ, मेरे को मैया कहे तब तेरे को फल दूंगी। अब भगवान इधर देखा उधर देखा, कोई देखता नहीं है, कूद के उसकी गोद में गया। बोला मैया उतर के अब फल दे दे। वो फल वाली ने क्या फल दिया, भगवान को देती गई, जितना उठा सके उतना उठा लिया, और वो भगवान अंदर ले गए। तो बोला इतना फल कहां से लाया, यशोदा मैया ने और गोपियों ने कहा। बोला फल वाली दे गई, सबने फल खाया। वो गोपियां बाहर जाती है तो ऐसे देख रही है वो, अरे बावरी क्या कर रही है, अब जाओ ना। कन्हैया कहां गया, वो सो गया। बेचारी ने टोकरी सर के ऊपर उठाई है, जा रही है वापस, कन्हैया का दर्शन मन में बसा हुआ है। अरे टोकरी बड़ी भारी लग रही है, इट इज ए लिटिल हैवी, व्हाट इज ए प्रॉब्लम। नीचे उतार के देखती है तो फल तो दे दिया था, वो जो दाने कन्हैया के हाथ के आए थे वो सब हीरे मोती बने हुए हैं, सोना चांदी बन गया है। वो भगवान ने क्या फल लिया, अरे उसने कहा भगवान ने मेरे को माया दे के भगा दिया, उठा के सारी माया जमुना डी में डाल दी और समुन्द्र में फेंक के कन्हैया कन्हैया करती हुई आगे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो गोपियों में एक बड़ी सवा सौ साल की गोपी, बूढ़ी गोपी थी, दांत वांत नहीं थे। और जब भगवान का नंद उत्सव मना रहा था जन्म का, तो जब देखने गई थी ना, तो वहां सब मक्खन के गोले फेंक रहे थे। ये बोली अरे देखो ऐसा बड़ा उत्सव देखा नहीं, एक ग्वाले ने दे मारा गोला सीधा माँ के मुंह में, तो दांत वांत तो था नहीं, मुंह खुला हुआ था। बोला ये तो बड़ा अच्छा उत्सव है, दूर खड़े हुए को भी मक्खन मिलता है। अब जब 3.5 साल भगवान की आयु हो गई कृष्ण की, तो गोपू ने ख्याल किया कि गोकुल के अंदर कभी देखते हैं तो पूतना आती है, कभी मामा इसको हवाई जहाज भेजता है, तो तृणावर्त घुमा के कृष्ण को ऊपर घुमा के आता है। मामा कंस ने हेलीकॉप्टर भेज दिया तृणावर्त के, ले जा कृष्ण को आकाश में घुमा के आ जा, और कभी जो है ये पेड़ गिर गए हमको यहां नहीं रहना। आप देख लो एक भगवान के लिए, एक कृष्ण 3.5 साल के बच्चे के लिए गोकुल वालों ने अपना घर छोड़ दिया, खेत छोड़ दिए, खलियान छोड़ दिए, और सिर्फ अपनी गाय लिया और गोकुल को विदा किया। और जैसे नंद बाबा निकले तो वृष भानु ने कहा हम भी रावल में नहीं रहेंगे, अब चलो। अब जब जा रहे रस्ते में तो कृष्ण को मैया को पूछ रहे कि वो कौन है, बोला वो गाय है, बोला वो कौन है बैल है उसका पति है, बोला वो कौन है, बोला बंदरिया है, बोला वो कौन है बंदर इसका पति है। अरे कन्हैया रोने लगा जोर जोर से, सब इकट्ठे हो गए, बोला रो क्यों रहा है, सबने गाड़ियां रोक दी, बीच में बैठ गया कन्हैया, सब चारों ओर बैठ गया, बोला रो क्यों रहा है। बोला वो बैल है, बैल है गाय का पति, बंदर है बंदरिया का पति, तो मैं किसका पति, हाँ मैं किसका पति। अब सब स्त्रियां हंसने लगी, ये क्या कह रहा है 3.5 साल का बच्चा। वो बुढ़िया जो बैठी थी, दांत वांत नहीं था, उसके मन में आया कि मेरी गोद में कन्हैया कब बैठेगा, यशोदा की गोद में जा रहा है, मेरी गोद में कब आएगा। भगवान ने उसके मन को समझ लिया, और उन्होंने जब स्त्रियों सबने कहा अरे तू 3.5 साल का बच्चा है, तू इनमें सबसे पसंद करो जेरी, जो तुम्हें पसंद आए वो तेरी पत्नी। अब कन्हैया सबको देख के वो 1.25 साल की बूढ़ी के पास गया, बोला ए मेरी पत्नी, उसकी गोद में जाके बैठ गया। अब सब गोपियां कहती अरे तुमने जाके इसको पत्नी चुनी है 1.25 साल की। बोला हम दोनों एक जैसे। बोला कैसे, बोला दांत मेरे भी नहीं है, दांत इसके भी नहीं है, मैं भी बच्चा हूँ, दांत मेरे भी नहीं है, ये दांत इसके भी नहीं है, तो हम दोनों ये बराबर है। ओह उस ग्वालन को बड़ा आनंद दिया कन्हैया ने। तो भगवान को फल वाली ने फल दे के भगवान को अपना रस दे दिया, भगवान को बस में कर दिया, और पानी भगवान को किसने दिया, हरे कृष्णा, गंगोत्री से पानी लेके निकला था रामेश्वर जाके भगवान राम को चढ़ाने के लिए, और रास्ते में भगवान उससे पानी मांगने के लिए आ गए, और अपने साथ शिकारी बन के कुत्ता लेके आया, उसने सब पानी उसको पिला दिया। क्या नाम था उसका, हरे कृष्णा, क्या नाम था जल अर्पण करने वाले का, भागवत में कथा है इसकी। जो भी है, बात कर रहे थे युक्त आहार, भोजन नेम से करना चाहिए, नेम से, नेम का मतलब समझते हैं, नेम का नेम मीन्स रेगुलेटेड, रेगुलेटेड मीन्स टाइम टू टाइम। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की ना, व्हेन ब्रह्मा क्रिएटेड, तो आदमी बनाया, फिर पशु बनाए, फिर एनिमल्स बनाए, काबरी काबरी बनाई, काबरी समझ ना, काबरी हाँ काबरी। तो ये सारे एनिमल्स ने कहा, ब्रह्मा जी हमको बहुत भूख लगी है, क्या करें, भूख लगी क्या करें, वी आर हंग्री, व्हाट कैन वी डू। बोला व्हाट एवर यू गेट, वेर एवर यू, जहां मिले जो मिले जाओ खाओ। तो एनिमल जब मिलता है, जहां मिलता है खाते, तब तो आदमी पैदा हो गए। जब ये इंसान बैठे थे, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी बाबा हमको भी भूख लगी है। बोला टाइम से खाओ, नेम से खाओ, रेगुलेटेड खाओ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करो, दोपहर का लंच करो, रात को डिनर करो, बस तीन बार बहुत है। अगर एक बार से काम चले जाए तो अच्छा है, दोपहर के खा जाओ, अगर थोड़ी भूख लगती है तो सुबह शाम खा लो। तो आदमी बड़े नेम से चलते थे, लेकिन बाद में फिर कुछ बहुत बड़े बुद्धिमान पैदा हो गए। उन्होंने कहा कमाल है, कितना गलत है ये, व्हाट इज रॉन्ग, इट इज वेरी रॉन्ग, एनिमल कैन ईट एवरी टाइम, एनी टाइम स्टैंडिंग, व्हाई आर वी ओनली रेगुलेटेड ईट थ्री टाइम्स, वी आर लेस देन एनिमल्स, क्या हम आदमी पशुओं से कम है क्या, हम जब आएंगे जहां आएंगे जो आएगा वो खाएंगे। सो पीपल बिकम एनिमल, अरे दो देखो खड़े खड़े खाते हैं ऐसे है, ले लिया खाया, ना हाथ धोया ना मुंह धोया और चल दिया। व्हाट इज दिस, नीति शास्त्र ने लिखा है खड़े खड़े सिर्फ भगवान का चरणामृत ले सकते हो, पानी भी बैठ के पीना चाहिए, खाना तो खड़े होके कभी खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को खाना खाना ही नहीं आता है, खड़े खड़े रास्ते में देखा कैसे खाते खाते जाते हैं, ये तो एटिकेट ही नहीं है खड़े होके खाने का, पशु खड़ा होके खाता है, ह्यूमन नहीं, इंसान नहीं खाता। तो युक्त आहार, आहार का भोजन पहले तो इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है युक्त आहार सिर्फ तब हो सकता है जब हम ये निश्चय कर लें, ये डिसाइड कर लें, ये कमिटमेंट कर लें कि भगवान का प्रसाद खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, जो भगवान को अर्पण होगा वही खाएंगे, प्रसाद खाएंगे तो रेगुलेटेड हो जाएंगे। तो भगवान का प्रसाद खाने वाला भाग्यशाली, बड़े नेम से उसका जीवन नेम से चलता है। युक्त आहार युक्त विहार, कथा हमने इसलिए आज इसलिए चुनी है, ये हम क्या करने आए हैं, विहार। विहार का मतलब रिक्रिएशन, यहां शब्द जो है वो शब्द को विहार का ट्रांसलेशन देख लो, युक्त आहार विहारस्य। विहार का अर्थ क्या बताया अभी, 17 getting हरे कृष्णा। युक्त आहार विहार, विहार का मतलब है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन की माना आती है ना, रिक्रिएशन। हम थोड़े थक गए थे, काम काम कर कर के थक गए थे, तो सोचा कि चलो थोड़ा लामिया चले, समुन्द्र के किनारे क्या करेंगे, लामिया में ठंडी हवा खाएंगे, समुन्द्र के किनारे चलो चलते हैं, समुन्द्र के किनारे। तो हम आ गए समुन्द्र के किनारे, तो ये हो गया रिक्रिएशन। लेकिन ये भी रेगुलेटेड होनी चाहिए, इस रेगुलेटेड का मतलब क्या है, हरे कृष्णा, इस रेगुलेटेड का मतलब है जैसे आप सब हमारे साथ आए हैं, कम से कम कपड़े तो पूरे पहन के बैठे हैं ना। नहीं तो जो समुद्र पे आते हैं वो कपड़े न के बराबर पहन के घूमते हैं, इसलिए ये जितने लंबे पेड़ मेरे को मॉरिशस में दिखते हैं ना समुद्र के किनारे, ये सभी जब बगैर कपड़े वाले भगवान के धाम जाते हैं तो वापस पेड़ बन के आते हैं। ये सब पेड़ वो हैं जो पड़े होते हैं समुद्र के किनारे, चड्डी पहन के सोए होते हैं। तो युक्त विहार का मतलब जाओ रिक्रिएशन पे, जाओ पिकनिक पे, लेकिन इंसान बन के रहो। बोला अगर सुंदर लगता होता आदमी बगैर कपड़े, तो ये कुत्ते बिल्ली सुंदर लगते होते ना, कभी कपड़ा पहनते ही नहीं है, तो हम काहे के लिए कपड़े उतार के घूमे। क्या मेरे को आज नया शब्द सिखाया था आपने, निशा, क्या कुत्ते को क्या बोलते हैं, निशा, घूम रहे हैं यहाँ सब। डिफरेंस क्या है? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लोगों ने एडवांसमेंट किस बात में की है? बगैर जो आएगा वो खाएंगे, ईटिंग में एडवांसमेंट की है, कुछ भी खाएंगे कभी खाएंगे। और एडवांसमेंट किस में की है? स्लीपिंग में, आगे पड़े होते हैं यहाँ, देखो हमारा यहाँ कोई सोया हुआ नहीं है, सब बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो क्रिएशन के रिक्रिएशन कैसा होना चाहिए? रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब समय से आना, समय से बैठना, और यहां भी बैठ के भगवान को याद करना। कितनी सुंदर प्रकृति है, वो हमारा सुंदरलाल कह रहा था सो ब्यूटीफुल भगवान की क्रिएशन है, तो भगवान कितना ब्यूटीफुल होगा, जिसने इतना सुंदर ये संसार बनाया है वो कितना सुंदर होगा। भगवान की सुंदरता का ये थोड़ा सा झलक है दुनिया के अंदर। सो युक्त आहार विहारस्य, खाना भी नियम से होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। रिक्रिएशन पिकनिक भी रेगुलेटेड होनी चाहिए, टाइम से होनी चाहिए, मर्यादा से होनी चाहिए। दूसरे लोगों को भगवान याद दिलाने का माहौल पैदा करना चाहिए, अजामिल की तरह। ऐसा नहीं दृश्य हो कि लोग अच्छे खासे ब्राह्मण की पतन के रास्ते पे चले जाएं। और अजामिल के पतन का कारण क्या है भागवत में? अच्छा खासा ब्राह्मण का बेटा था, घर में पूजा करता था नारायण शिला सालंगराम की। अरे यहाँ एक आपके गांव आया था, उस गांव का नाम था क्या, गोल गोल पत्थर वाली नदी, क्या कहते हैं उसको, हाँ रिविया गाले, हाँ रिविया दी गाले, और सालंगराम पत्थर वाली नदी है गोल गोल, अरे कृष्णा। तो सालंगराम शिला की पूजा करते थे, और सालंगराम शिला की पूजा करते थे यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गए, फल फूल लेने गए, और देखा कि एक नहीं कपड़े पहने हुए कोई प्रॉस्टिट्यूट, कोई वैश्या किसी लंपट पुरुष को आलिंगन कर रही थी। ऐसा दृश्य देखने से अजामिल के ब्राह्मण का धर्म कहने लगा नहीं, इसको देखना नहीं चाहिए। लेकिन कहते नहीं, एक मान देखने में क्या होता है, और उसको देखने तरफ उसकी आंख गई। आप मानेंगे नहीं ना मानेंगे, हम इतना जानते हैं कि यहाँ जो आते हैं सब कहते हैं हमको देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे करके देखते उधर ही साहब, उधर ही देखते, हाँ कहते नहीं देखना है, लेकिन फिर ऐसे आधी आंख से। अरे कहां गोपियां कहती हैं भगवान आपने दो आंखें दी, एक आंख तो रखते हैं निंदा करने वालों को, कोई देख न लेके हम देख रहे हैं कृष्ण को, और दूसरी आधी आंख से हम कम से कम घर वालों को देखता है, कोई हमको देख तो नहीं रहा है, आधी आंख से कृष्ण को देखते हैं, उसके ऊपर भी तुमने पलकें बना दी है, आंख बंद हो जाती है। अरे ब्रह्मा तेरे को आंख बनाना भी नहीं आई, कृष्ण को देखने के लिए थोड़ी आंख भी नहीं छोड़ी। तो यहाँ किसी का किसी को परवाह नहीं है, तो देखने के लिए क्या आते हैं, यही कुछ देखने के लिए। आई एम जस्ट पुटिंग माई फुट ऑन दिस, सो इट वर्क्स। अरे कृष्ण धन्यवाद, हरि बोल। तो युक्त विहारस्य, मर्यादा में रहना चाहिए। बहुत बड़ा नहाना क्या, ये समुद्र हिंद महासागर, श्री चैतन्य महाप्रभु रोज इसमें स्नान करते थे जगन्नाथपुरी में, ये बड़ा तीर्थ है हमारा। और हरिदास ठाकुर नाम आचार्य के शरीर को अपने गोद में लेकर चैतन्य महाप्रभु इस हिंद महासागर में स्नान कराया, तो और उसके बाद महाप्रभु स्वयं झोली लेके आनंद बाजार, ऐसा एक जगन्नाथपुरी का मंदिर है जिसमें हर समय 1,00,000 आदमियों के खाने जितना भोजन तैयार होता है, 1,00,000 आदमी आए उतना भोजन हर वक्त रेडी रहता है, और वहां से जाके भिक्षा लाए और लाके सबको प्रसाद खिलाया। तो ये तो हमारे लिए पूजनीय स्थान है, इसको प्रणाम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु पहले तो इस समुद्र को कृष्ण समझ के महाप्रभु उसके अंदर कूद पड़ते थे, अरे ये तो सांवले रंग का है, ये तो कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण करके अंदर गिरे पड़े। एक बार गिर पड़े तो मछियारे की जाल में पड़े, वो जो फिशरमैन था ना उसकी जाल पड़ी थी, वो अंदर जो नेट पड़ी थी महाप्रभु उसके अंदर फंस गए। अब मछियारे ने देखा कि आज बड़ी भारी है जाल, नेट इज वेरी हैवी, आज तो बड़ा कुछ हमारे को निकाला, तो कोई एक पुरुष सफाई तो हाथ लगाते हैं। अब मच्छर ने हाथ लगाया, हरि बोल हरि बोल, ऐसे हरि बोल करने लग गया। तो घरवाली ने कहा सुबह से गया है वापस नहीं आया, वो देखे हरि बोल क्या कर रहे हो, तो घरवाली उसको हाथ लगाया जैसे करंट आया हरि बोल हरि बोल। अब घरवाली के बच्चे आए कहीं बाप नहीं आया माँ नहीं आई, वो कहते क्या कर रहे हो, सब बोले हरि बोल हरि बोल। अब महाप्रभु को हाथ लगाने से सब हरि बोल करने लगे, तब तो ढूंढते ढूंढते महाप्रभु को देखते हुए आए और देखा तो कीर्तन किया महाप्रभु पर निकल के आए। तो समुद्र तो ये महाप्रभु का स्नान क्रीड़ा का स्थल है जगन्नाथपुरी में, प्रतिदिन महाप्रभु जाके इस हिंद महासागर में स्नान किया करते थे। तो युक्त विहार का मतलब है कि जब हम यहाँ आए हैं तो बड़े आदर के साथ इस समुद्र को प्रणाम करना चाहिए, महाप्रभु की याद करनी चाहिए। और ये समुद्र बना किससे है, ये महाराज प्रियव्रत जो स्वयंभू मनु के पुत्र हैं बड़े, उसके रथ के पहियों से धरती के अंदर ये बहुत बड़े खड्डे हुए जिसमें ये समुद्र बने। इसका नाम समुद्र क्यों है, समुद्रा, स का मतलब साथ अलांग विथ, और मुद्रा का मतलब धन, जिसके पेट के अंदर हीरा मोती होता है, इसके अंदर हीरा होता है, मोती मोती होते हैं, पर्ल्स होते हैं। तो मुद्रा का मतलब होता है वेल्थ, जिसके पेट में वेल्थ हो, इसका नाम है रत्नाकर। दूसरा इस समुद्र का नाम है रत्नाकर, रतन आकर, ये रतन इसके पेट में रतन है। रत्नाकर महादेव मंदिर, एक मंदिर है शंकर जी का समुद्र के किनारे, उसका नाम लिखा है रत्नाकर महादेव। और चेतना महाप्रभु का बहुत सुंदर उदाहरण एक दिया हुआ है समुद्र का, रामानंद राय और चेतना महाप्रभु का जहां मिलन होता है वहां लिखा है रामानंद मेघे, रामानंद है बादल क्लाउड, और भगवान श्री चेतन्य महाप्रभु है रस समुद्र, भक्ति रस के समुद्र, ये सागर है। तो भगवान चेतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति का रस रामानंद रूपी क्लाउड को दिया, और फिर रामानंद ने वही रस समुद्र रत्नाकर महाप्रभु के ऊपर बरसाया। ये शब्द लिखिए, इससे सिद्धांत क्या स्थापित होता है, व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस। ये सी का पानी है ना, इतना बड़ा सुंदर है, देखने में लगता है सब घूमने आते हैं, ये कोई नहीं पीता है, कोई पीता है, हाँ कैन से एनीबॉडी ड्रिंक दिस वाटर। और नहाने के बाद भी दूसरे पानी में नहाना पड़ेगा नहीं तो चपकेगा। और इतना अच्छा आपका आइलैंड है, बड़ी ग्रीन फील्ड है, शुगर केन है, ये पानी देने से शुगर केन बड़ी हो जाएगी, हाँ फिर किस काम का। लेकिन इसी समुद्र के पानी को सूर्य जब ऊपर उठा के बादल बनाता है तब वो रिवर में आ जाता है, रिविया बन गई, तो फिर वो पानी पीने के काम भी आ रहा है और खेती में भी काम आ रहा है। ऐसे महाप्रभु स्थापना कर रहे हैं शास्त्र की कि शास्त्र समुद्र के बराबर है, इट इज लाइक ए ओशन, और भगवान भी समुद्र के समान है। यू कैन नॉट डायरेक्टली गेट बेनिफिट फ्रॉम स्क्रिप्चर और सुप्रीम लॉर्ड, नहीं सीधा नहीं ले सकते हो लाभ। जब कोई साधु तपस्या करेगा और उस समुद्र में से पानी को बादल बना के मीठा करेगा और जब आपको देगा तब अमृत आप पी सकते हो, समुद्र का नहीं पी सकते हो, लेकिन बादल बन के जब कोई साधु देगा तब आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी। अरे मॉरिशस हरा भरा है, आप चाहते हो ये हरा भरा रहे हमेशा, इट शुड बी ऑलवेज ग्रीन। तो ग्रीन कैसे बनता है, कलर ग्रीन कैसे बनता है, अरे बच्चे लोग स्कूल पढ़ते हैं ग्रीन कैसे बनता है, पढ़े थे स्कूल में कभी ग्रीन कैसे बनता है, बोलो इज ग्रीन कलर इन इटसेल्फ, नहीं तो कैसे बनाते हैं ग्रीन, येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, हाँ हाँ पीला और नीला मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है, ब्लू, और राजा रानी का रंग कैसा है, बस दोनों को घर में बिठा दो, आपका घर ग्रीन, आपके देश में बिठा दो देश ग्रीन, तो राधा कृष्ण सब देश को ग्रीन कर देगा। जिसको चाहिए ग्रीनरी उसको राधा कृष्ण का शरण लेना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, और तीसरा है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त चेष्टस्य, चेष्टा कहते हैं एंडेवर को, युक्त चेष्टस्य, चेष्टस्य ऑफ वन हु वर्क्स फॉर मेंटेनेंस इन डिस्चार्जिंग ड्यूटी। कथा पूरी करें,
एक बस आएगा।
अच्छा, अरे कृष्णा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। चेष्टा का मतलब है एंडेवर। अगर हमारे को जीवन को मेंटेन तो करना है ना, वो काम भी रेगुलेटेड होना चाहिए। काम रेगुलेटेड होने का मतलब ये है, काम करने का टाइम भगवान ने नियम बनाया है, वो काम का टाइम है। खाने का टाइम अलग होता है, नहाने का टाइम अलग होता है, काम का टाइम अलग होता है। शास्त्र ने कहा 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। टेक बाथ, गिव अप 100 एंगेजमेंट। 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। यू मे हैव 1000 वर्क्स टू डू बट ईट द प्रसाद इन राइट टाइम। 1,00,000 काम छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। यू मे हैव 100,000 वर्क्स टू डू बट गिव इट अप ऑल एंड डू चैंट हरे कृष्णा। और 10,000,000 वर्क छोड़ के साधु संग करना चाहिए, बस वापस नहीं ले जाना चाहिए। हरे कृष्णा, मिलियन वर्क छोड़कर साधु संग करना चाहिए। तो ये हो गया कर्म में, काम करने में भी रेगुलेशन हो जाए। और फिर है, और लास्ट लाइन है युक्त स्वपन अवबोधस्य। स्वपन सोना भी रेगुलेटेड होना चाहिए और जागना भी रेगुलेटेड होना चाहिए। सोने का समय भक्त तो एक समय नहीं, प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा है डिवोटी डोंट वांट टू वेस्ट ए मोमेंट। एक क्षण भी बेकार नहीं जाना चाहिए व्यर्थ में। प्रभुपाद लिखा सोने के लिए रूप गोस्वामी 2 घंटे सोते थे। हरिदास ठाकुर तो कहते थे तब तक खाऊंगा नहीं सोऊंगा नहीं जब तक मेरा 3,00,000 का 300,000 जब पूरा नहीं हुआ है। तो भक्तों को नेम से सोने का टाइम, अंग्रेजी में जब हम बच्चे थे पढ़ते थे ना तब हमको एक चीज पढ़ाते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपने कभी पढ़ा था ये बचपन में? ये हमको पढ़ाते थे इंग्लिश में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सवेल सो सवेल उठो। लाभ क्या, व्हाट इज द बेनिफिट? मेक्स मैन हेल्दी, स्वस्थ अच्छा रहेगा, वेल्दी धन आएगा, और वाइज बुद्धिमान होगा। यहां तो रात को आपका देश में हमको अच्छा लगता है कि बाजार 5 बजे बंद, आदमी 7 बजे घर। अगर उसका बाकी जीवन अच्छा है और कोई बुरी आदत नहीं है तो सवेल सोएगा सवेल उठेगा। और मैं देखता हूँ यहाँ 5 बजे लोग उठते हैं काम करने चले जाते हैं। वेरी गुड आइलैंड में ये अच्छी बात है। युक्त स्वप्न अबोधस्य, और जागने का भी टाइम ठीक ठाक होना चाहिए, समय पे जागे समय। तो फिर ऐसा अगर योग का अभ्यास करेगा तो कभी दुख नहीं भोगेगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की पिकनिक में आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और जिन्होंने भी बस की सहायता की, ऑर्गेनाइज किया, प्रसाद खिलाया, उन सबका धन्यवाद करते हैं। वी आर थैंकफुल टू ऑल। और जो सीनियर सिटीजन आए, वी आर स्पेशली थैंकफुल टू देम बिकॉज दे आर यंगर, उनकी दे आर 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस ऑफ 45 ईयर्स। आप अपने काल को 20 साल से बड़े मत समझो, बोला हम 20 साल के हैं, 50 साल का एक्सपीरियंस है हमारा जीवन में, लिव लाइक दैट। और जो बच्चे आए उनका भी धन्यवाद, और श्याम रव प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, ऑर्गेनाइज किया और ये यात्रा का सब जगह अरेंजमेंट किया, और इनका पूरा परिवार जिनके घर में हम रह रहे हैं, हरिगंगा माता जी बड़े बच्चे की तरह हमारा पालन पोषण कर रही है, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और लखन प्रभु 5 दिन से हमारे साथ सेवा में है, इन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हरि बोल।
हरे कृष्णा।